जैसे कोई भी नेकी अपने अरूज पर पहुंचती है। हमने रही को मखदूम का सफ़र एक तवील अरसे में सर किया, या कह लीजिए कि तय किया। अल्लाह ताला ही के हुक्म से ये सीरीज़ शुरू हुई थी। मैंने अमेरिका में ये सीरीज़ शुरू की थी और पूरी बुक पढ़ाई थी। फिर बास दफ़ा कुछ टेक्निकल थिंग्स, कुछ सर्वर की चेंजेस में कुछ रिकॉर्डिंग्स मिस हो गई। और ये आखिरी हिस्सा जो ख़ास तौर पे हमने फ़तेह मक्का से लेके अब तक ये लास्ट मंथ में किया, आज उस सिलसिले की आखिरी क्लास है। और मैं ये सोच रही थी कि ज़मीन के टुकड़ों के भी नसीब होते हैं इंसानों के नसीबों की तरह। कब, कहाँ, क्या नेकी किससे अल्लाह ने लेनी है ये अल्लाह को पता है। वह बहुत ही मोहब्बत के साथ आज हम अपने आज के इस टॉपिक को कमाले नफ्स और मकारमे अखलाक, वो हस्ती जिसकी ज़िंदगी की कहानी हमने ए टू ज़ी पढ़ ली और रहीको मखतूम में अल्लाह के नबी की बेसत से पहले, इवन आपकी पैदाइश से पहले के हालात पर भी एक तवील टॉपिक हमने पढ़ा इस सीरीज़ में। तो आज हम शुरू करेंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अख्लाक कैसा था। आप कितने नफीस इंसान थे, यानी बीइंग अ करेक्टर हॉवाज ही। और आज इस बात को इतना आम करने की ज़रूरत है कि दुनिया में कोई शख्स कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बुरा बोलना तो दूर की बात है, सोच भी ना सके। आज उम्मते मुस्लिमा की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपने प्यारे नबी का खूबसूरत किरदार लोगों के सामने खोले। तो आइए देखते हैं इसको और दुआ करते हैं कि हम जो कुछ भी पढ़ें हमारे अपने अंदर भी यही आ जाए, यानी प्योरली। जैसे कल के सेशन जो लास्ट सेशन था, इसमें हमने नबी सल्लम का ज़ाहरी फिजीक, आपका उठना, आपका बैठना, आपका बात करना और आपका ज़ाहरी हुसन देखा, तो आज हम आपका बातनी हुसन देखेंगे जो वाकई फिर हमारे लिए एक उसवे हसना है। आइए देखते हैं कमाले नफ्स और मकारमे अखलाक। कमाल का लफ्ज़ उर्दू में आता है, नफ्स का लफ्ज़ भी उर्दू में आता है। किसी भी चीज़ का कमाल, उसकी पीक, और नफ्स तो नफ्स है और मकारमे अखलाक अगर आप देखें तो इसके अंदर भी करम है, काफ रा मीम। तो मकारिम मफाइल का वज़न, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक की किन बुलंदियों पे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसाहत व बलागत में मुमताज़ थे। फसाहत किसको कहते हैं? फसीह, फासिखा भी लफ्ज़ है, फसीहा नाम बहुत प्यारा नाम है अगर किसी लड़की का हो। बलागत, बलागा से, यानी आप जो बात करते थे ना वो सीधी किसी के अंदर उतरती थी। आपका किरदार ऐसा था, आपके बात करने का अंदाज़ ऐसा था कि लोगों के दिलों पे उतरता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत की रवानी, लफ्ज़ के निखार, फ़िक्रों की जजालत, मानी की सेहत और तकल्लुफ़ से दूरी के साथ साथ जवामियुल कलिम, यानी जामे बातों से नवाजे गए थे। मुश्किल लफ्ज़ हैं और हमारी उर्दू अब इतनी अच्छी नहीं रही। तो मतलब क्या है इस सारे जुमलों का? कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी सी बात में बहुत बड़ी बात कह लेते थे। आपका स्टाइल पेनिट्रेटिंग था, यानी एब्जॉर्प्शन थी। जब कोई आपकी बात सुनता ना तो उसका दिल करता मैं मज़ीद सुनूँ। आज भी बास आवाज़ों में इतनी अट्रैक्शन होती है कि आप उसको सुनकर एकदम खामोश हो जाते हैं। कुछ लोग बात करते हैं, उनकी बात कोई भी हो लेकिन उनका अंदाज़ बहुत समझ वाला होता है। अल्लाह के नबी ऐसे थे। फिर फिक्रे बहुत छोटे होते थे, लंबे लंबे फिक्रे नहीं बोलते थे, लफ्ज़ निखरे होते थे, तबीयत रवां थी। यानी आप हैंकी पैंकी, ओके मैंने कहा, और ये तो चंद जुमले लफ्ज़ मैंने बोले ना, आप थोड़ी सी अपनी 2-4 मिनट की रिकॉर्डिंग करके ख़ुद सुने तो आपको पता चल जाएगा कि आम तौर पे लोग अपनी बात के अंदर कितने एफ्स एंड बट्स लगाते हैं। तो आपकी बात बिल्कुल साफ थी और तकल्लुफ नहीं था, कोई बना के बात करने का अंदाज़ तो आपके पास था ही नहीं है। बहुत सीधी बात करते और जवामिल कलिम, यानी कॉम्प्रिहेंसिव स्पीच थी आपकी। आपको नादिर हिकमतों और अरब की तमाम ज़ुबानों का इल्म अता हुआ था, चुनाचे आप हर कबीले से इसी की ज़ुबान और मुहावरों में गुफ्तगू फरमाते थे। लिखिए, ये भी बहुत बड़ी बात है। किसी को अल्लाह ताला ये खूबी दे दे कि वो जहाँ बैठे, जिनके बीच में बैठे, उन जैसा हो जाए, ये अल्लाह का एक अतिया होता है। देखिए, जिनसे अल्लाह ने काम लेने होते हैं ना इस लेवल के, क्योंकि अल्लाह के नबी तो रहमतुल आलमीन थे, आप तो अगलों आखरों सबके लिए अल्लाह की तरफ से भेजे हुए कासिद थे ना, तो आपको सब की जुबानें, और जुबान से मेरा सिर्फ लैंग्वेज नहीं है, बस आप कहें कि नॉर्वेजियन और फ्रेंच एंड डच, ये नहीं मुराद, कुछ कल्चर होते हैं, कोई अपनाइत का एक अंदाज़ होता है। तो अरब लोग जो मुख्तलिफ कबाइल में बटे हुए थे ना, अल्लाह के नबी जब भी किसी के बीच में जाकर बात करते ना, बिल्कुल वैसे ही हो जाते। चुनाचे आप हर कबीले से इसी की ज़ुबान और मुहावरों में गुफ्तगू करते। आप में बदवियों का ज़ोरे बयान और कुव्वते तखातुब और शहरियों की शुस्तगी अल्फाज, यानी शहरियों की शुस्तगी अल्फाज और शुफ्तगी और शाइस्तगी जमा थी, और वही पर मबनी ताईद रब्बानी अलग से। कौन जाने इस उर्दू को, हैं हमारी तो इंग्लिश भी ख़राब, हमारी तो उर्दू भी ख़राब, हमारी पंजाबी भी ठीक नहीं है, और बाकियों का क्या कहूँ। मुराद क्या है कि बद्दू अरब लोग, देहाती, आज भी देहातियों की ज़ुबान बड़ी नुथरी भी होती है, निथरी भी, सुथरी, साफ बोलते हैं। मसा आप देखिए कि आप किसी शहर में रहने वाले का जुमला उर्दू का सुने, उसमें दो तीन इंग्लिश के लफ्ज़ होंगे, हालांकि शहरों देहातों में रहने वाले सीधी सीधी सिंपल प्लेन लैंग्वेज बोलते हैं। बहुत मुश्किल उर्दू ना भी हो लेकिन सीधी ज़रूर होती है। इसी तरह आप कहने कुव्वते तखातुब, तखातुब क्या होती है, किसी को एड्रेस करना, यानी अल्लाह ने आपको ये कुव्वत दी थी, ये एक आपकी पावर थी कि आप किस तरीके से किसी को खिताब करें और उस पर असर क्या हो। फिर शुस्तगी थी, आज मैं और आप भी ज़रा अपने बोलने के पर गौर करें, और ख़ास तौर पर जब बच्चों से बोलते हैं, जब गुस्से में बोलते हैं, जब मुलाजमों से बात करते हैं, जब हम अपने से छोटों से बात करते हैं, और आप देखिए कि जितना ज़्यादा आपकी बात ऐसी होगी ना कि जो दूसरों के दिल तक जाए, उतनी आपकी बात में असर भी होगा। फिर शाइस्ता थे, शगुफ्ता, शगुफ्ता मीन फ्रेश, आपको देख रहे ऐसे नहीं लगता हाय सारे दिन के थके हुए, क्या करूं, बोला नहीं जा रहा, बैठा नहीं जा रहा। जैसे हम अक्सर रात को अपने घर वालों के सामने बोलते हैं, बेचारे सारा दिन बाहर रह के आके शाम को हमारे दुख सुनते हैं, हाय थक गई, सुबह से बैठी नहीं। फिर इस तरह एक एक लफ्ज़ पे नोट कीजिएगा। नंबर एक, बुर्दबारी, हम्बलनेस, कुव्वते बर्दाश्त, ज़रा से इस पर गौर कीजिए। आप देखिए कि ये वो खूबियाँ होती हैं कि जिन चीज़ों को पाने के लिए आज लोग ट्रेनिंग द ट्रेनर्स जैसे कोर्सेज करते, आज की ज़ुबान में ये भी एक किस्म का फ़न बन गया कि आपको कि बोलना सिखाए। एक किताब है मीठे बोलों में जादू है, असल में इंग्लिश की एक किताब का तर्जुमा है, बोलने का तरीका बताया गया, और इसके लिए बड़े बड़े कोर्सेज हैं। आप अमेरिका में जाइए, $500 तक का कोर्स है जो सिर्फ लोगों को रिसेप्शन पे बैठने से पहले करवाया जाता है, ताकि आप एक इदारे को प्रेजेंट करते हैं, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को प्रेजेंट करते हैं, हेलो कहने से, फ़ोन उठाने से, बात करने से, कस्टमर डीलिंग, एक एक चीज़ लोग पैसे दे के सीखते हैं, और पीछे बड़े सबके लाके होते हैं, फलां यूनिवर्सिटी और फलां ट्रेनर और इतने पैसे। अल्लाह के नबी को कौन सिखा रहा था, लिखिए एक बात, सच्चा ईमान अंदर आ जाएगा ना, तो ऐसे ही कि जैसे आप अंदर से सेहतमंद हुए ना, तो आपके जिस्म पे, आपके रंग ढंग पे, आपकी हेल्थ पे उसका असर बाहर से दिखता है। जब आप अपने सारे मामले अल्लाह के हाथ में देते हैं, अल्लाह को मुख्तारे कुल समझते हैं, जो होगा देखा जाएगा, मैं क्यों अपनी फिक्र करूं, मैं अपने बच्चे की फिक्र क्यों करूं, मुझे किसी से क्या लेना, मुझे क्या देना, खुद बहुत बुर्दबारी आती है। बुर्दबारी के लफ्ज़ को अगर आप देखें ना, तो उर्दू का नहीं, ये फारसी और उर्दू मिलाकर बना हुआ लफ्ज़ है, बुर्द और बार। बार कहते हैं बोझ को, आपने कभी सुना है बार बर्दारी, जी बुर्द बारी बोझ उठाना, ये कौन होता है, ठंडे स्वभाव का बंदा, कोई भी उसको कुछ कह दे, गाली दे दे, डांट दे, थपक दे, वो अपने ऊपर उसकी बात का बोझ बर्दाश्त कर लेता है, डाल देता है उसको ये सब कुछ, उसको ऐसे लगता है कि मैं वाकई इन सारी चीज़ों में जो मर्जी कहना है मुझे कह लो। तो बुर्दबारी नबी की शान थी। हमें तो कोई बात कहे तो जाए किधर। कभी आप और मैं अपने ऊपर लेकर इन चीज़ों को सोचे ना, तो ये सीरत की बातें, आपका अखलाक और आपका कमाले नफ्स, ये असल में एक पूरी बॉडी लैंग्वेज है। तो अल्लाह के नबी के अंदाज में क्या था? बुर्दबारी। दूसरी चीज़ पे चलिए जो आपके अंदाज में थी और हमने इसको सीखना है। कोई बात नहीं, हम अपने प्यारे नबी से सीख रहे हैं और अजर की नियत से सीख रहे हैं, डबल अजर है। कुव्वते बर्दाश्त थी, टॉलरेंस था। कुव्वते बर्दाश्त ना होने की वजह से आज घर घर में लड़ाइयाँ हैं, जो घर टूटते हैं, जो तलाकें होती हैं। मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी और उसमें, यानी जो भी मेरे सामने चीज़ थी, उसका खुलासा क्या था कि अमूमन घर क्यों टूटते हैं, तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह कुव्वते बर्दाश्त की कमी। बाद में मियाँ भी कहते हैं मैं थोड़ा सा सबरी कर जाता, और बीवी भी कहती है कुछ मैं ही ज्यादा बोल गई। हर झगड़ा, हर लड़ाई जो बाद में हमें भुगतनी पड़ती है ना, ये हमारी बर्दाश्त की कमी की वजह से होती है। तीसरा अमल देखिए, कुदरत पाकर दरगुजर। सुभान अल्लाह, ला तसरीब अलैकुम अल्यौम। आज के दिन तुम पे कोई सरजिंच नहीं। पता है मक्का में, जबकि 21 साल से जो दुश्मन आपको सता रहे थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको क्या कहते हैं कि तुम्हें आज मुझसे उम्मीद क्या है? आप देखिए कि दुश्मन भी आपसे अच्छी उम्मीद रखे, ये तो बड़ी बात है। तो जब आपने अपने साथियों से पूछा कि ये बताओ कि तुम्हें मुझसे उम्मीद क्या है, तो कहा कि अल्लाह के नबी आप जो है ना हमें माफ़ कर देंगे। कहा अच्छा जाओ फिर मैं भी तुम्हें वही कहता हूँ जो क्या है, यूसुफ ने अपने भाइयों को कहा था। सुभान अल्लाह। अगली चीज़ दीजिए, कुदरत पाकर दरगुजर के बाद मुश्किलात पर सब्र। अब देखिए ये चार चीज़ें हैं, मुश्किलात पर सब्र, बुर्दबारी, कुव्वते बर्दाश्त और कुदरत पा के दरगुजर करना। सच बताइए सब में एक ही चीज़ कॉमन नहीं है? ये जो हमारे अंदर हाइपरनेस होती है ना, और हम उछलते और कूदते और तड़पते और तड़पाते, और हम कहते हैं अब जाए किधर कोई, अब मुझे कह दिया, अब देख तो भुगतना, अब देखना। याद रखिएगा ये आपकी शख्सियत होती है, और शख्सियत बाहर से नहीं बनती, ये अंदर से बनती है। छोटे छोटे पजल्स मिलकर बच्चा एक गेम बनाता है, कि कोई तस्वीर बन जाती है ना, कोई खिलौने के अंदर चीज़ें हैं। इसी को देखिए, इन सारी चीज़ों को आप अपनी ज़िंदगी में लेकर देखेंगे ना, तो आपको इस चीज़ का बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा होगा। सिर्फ़ एक खूबी अपने अंदर ले आइए, बाकी सारी खुद ही आ जाएंगी। और अंदर खाते हैं फिर इसमें सब्र है। हमारे यहाँ सब्र का एक बड़ा रिवायती सा मजमू है, तो फिर इतनी बात का खुलासा करती हूँ। हमारे बोलने के अंदाज में, हमारे बात करने के अंदाज में, हमारा दूसरों से मामला करने के बीच में कॉमन थिंग क्या है कि हम अंदर से कितने मुतमईन हैं। तो ये वो असाफ़ थे जिनके ज़रिए अल्लाह ताला ने आपकी तरबियत की थी, हर हलीम और बुर्दबार की कोई ना कोई लफ्ज़िश और कोई ना कोई ज़ुबान की बेख्तियाती जानी जाती है। मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुलंदी किरदार का आलम यह था कि आपके खिलाफ दुश्मनों की ईज़ा रसानी और बदमुआशों की खुदसरी और ज्यादती जिस कदर बढ़ती गई, आपके सब्र व हिलम में इसी कदर इजाफा होता गया। आप देखिए हलीम बनाते हैं, बड़ी बड़ी सख्त चीज़ें गल गला के घोट घाट के कैसे करते हैं। अगर कभी हलीम में से हड्डी निकल आए, आप तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, तो दांत की वो जो जड़ है ना उसमें घुस जाएगी। हलीम वो बंदा होता है, सारे लाओ बिस्मिल्लाह, और गालियाँ और बातें और गीबतें और बुरा और बुरो। मैंने भी एक दफ़ा ग्राइंडर चलाना है, मैंने भी सारा बर्दाश्त कर देना, हर एक की बात आपके अंदर पढ़ के ब्लेंड हो जाए। देखिए ज़रा सी शुरू में मुश्किल लगता है, दैट्स इट, बाद में तो बड़ा मज़ा आता है। फिर तो दिल करता है कोई आपको सताए और आप उसको माफ़ करें, कोई आपको बुरा कहे तो आप भला कहें, कोई आपको गाली दे तो आप उसको दुआ दें। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी दो कामों के दरमियान इख्तियार दिया जाता, तो आप वही काम इख्तियार करते जिसमें आसानी होती। आज हम न जाने कहाँ से दीन सीख कर आ गए। मुश्किलों में डाल दो, शोभदेबाजी और करतबबाजियाँ और इतने फतवे, इतनी बड़ी बड़ी बातें। अल्लाह के नबी वो काम इख्तियार फरमाते जो आसान होता, जब तक कि वो गुनाह का काम ना होता। और इसको अक्सर मैं एक मिसाल से समझती और समझाती हूँ कि आप गर्मियों की दोपहर में पैदल चल रहे हैं, सड़क में एक साइड पे धूप है, दूसरी तरफ थोड़ा सा साया है, तो अल्लाह के नबी साये में चलते हैं। खामखा अपनी जान को बोझ में डालना। लोग कहते हैं जी हम तो पैदल हज करेंगे, मदीना में जाएंगे तो जूता नहीं पहनेंगे। अल्लाह के नबी होते तो डांटते आपको, क्यों बीमार हो रहे हो। शर्त एक है कि गुनाह का काम ना हो। अगर गुनाह का काम होता तो आप सबसे बढ़कर इससे दूर रहते। यानी गुनाह नहीं, अगर गुनाह वाला काम है तो फिर आसानी तो छोड़िए, चाहे वो और कुछ करने से मिल भी उससे जाता, फिर भी ना वो करते। आपने कभी अपने नफ्स के लिए इंतकाम ना लिया। हमारी तो सारी जंगें और लड़ाइयाँ अपने लिए हैं। देखिए नमाज में क्या कहते हैं, व तआला जद्दुका, अल्लाह तेरी शान बड़ी बुलंद है। और सलाम फेरते ही, जाए नमाज तय करते ही, हमारी सारी जंगें अपने खिलाफ होती हैं। मुझे ये कह दिया, मुझे इज्जत ना दी, मुझे क्या समझा, मुझे नीची कुर्सी पे बिठा दिया, मुझे तो खाना पूछा ही नहीं। अल्लाह की बंदो, तुम अपने आप को फिरौन से बड़े समझते हो। इंसान का नफ्स है ना, इसके ऊपर पाँव रख के कुचल दीजिए तो इंशाल्लाह ये सारा कुछ आसान होगा। हम कहते मुझे तो आग लग गई, मेरे तो सर से पाँव तक आग लग गई, और अगले भी फिर तीली लगा के मज़ा देखते हैं कि आप तड़पते हुए लगते कैसे हैं। तो नफ्स के लिए कभी इंतकाम न लिया। अलबत्ता अगर अल्लाह की हुरमत चाक की जाती तो आप अल्लाह के लिए इंतकाम लेते। अल्लाह हमें ऐसा बना दे। शायद ही कभी अल्लाह के लिए किसी से नाराज़गी ली हो। हम कहते क्यों बुरे बने। शायद ही कभी अलहुब्बु फिल्ला वल बुग्ज़ु फिल्ला पे हमें अमल का मौका मिला हो कि अल्लाह प्यार करना है तो तेरे लिए करना है। वो हबशी था बिलाल, गैर अरब था, लेकिन कितना प्यारा था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और अबू लहब चचा था, शोलों का बाप, हुसन में एक से एक भड़के, जो भी हो सकता था, लेकिन अल बुग्ज़ु फिल्ला, बुग्ज़ तो बुग्ज़ है। आज से अपनी मोहब्बतों और अपनी नफ़रतों को नबी की सीरत के मुताबिक लाइएगा। आप देखेंगे सुख का सांस लेंगे, और ये जिनको आप खुश करना चाहते हैं उन्होंने आज तक ना हुए, ना होना है, और ना कभी हुए होंगे। सिर्फ अल्लाह के लिए काम करें, प्यार भी अल्लाह के लिए, बुग्ज़ भी अल्लाह के लिए। सगा बेटा है नूह का, या बुनै अरकब माना है, बेटा आजा कश्ती में सवार हो जा। लेकिन जब देखा कि बेटा नहीं मान रहा, अल्लाह ने कहा है यू नूह, या नूहू, ये क्या किया आपने, मुशरिक बेटे के लिए दुआ कर ली। तो याद रखिए ये है तो बड़ा मुश्किल, ये इमोशनल टॉर्चर होता है। हम जज्बाती कुर्बानियाँ नहीं देते, बकरे और गाय भैंसे बहुत कुर्बान करते हैं। आप सबसे बढ़कर गैज़ो गज़ब से दूर रहते थे, यानी आपको ना गैज़ अच्छा लगता था ना गज़ब, और सबसे जल्द राजी हो जाते थे। सुभान अल्लाह, कभी नाराज़गी हो जाती है, साथ रहतों में हो जाती है, दो बहनों में हो जाती है, सहेलियों में हो जाती है, शोहर बीवी में दिन में 4 दफ़ा होती होगी, भाई भाई से लड़ता है, सोने से पहले सुलह कर लीजिए। राजी रहे, तुम भी राजी, हम भी राजी, जल कुड़ के किसी को क्या मिला, आपका नुकसान हुआ। जुदो करम का वसफ ऐसा था किसका अंदाजा ही नहीं किया जा सकता। जूद क्या होता है और करम क्या है, जेनरस, खर्च करने वाले, सखी। आप उस शख्स की तरह बख्शिश और नवाजिश फरमाते थे जिसे फकर का अंदेशा ही ना हो। ये जुमला एक गैर मुस्लिम ने बोला था आपके लिए, जब गजवे ताइफ और उसके इर्द गिर्द के जंगों में इतना कुछ मिला, बल्कि हुनैन की जंग थी, हजारों की तादाद में बकरियां और जानवर आ गए, तो आपने एक शख्स को इतनी बकरियां दी कि पूरी वादी बकरियों से भर गई। उसने और मांगी, और दे दी, और दे दो। उसने जाकर अपनी कौम से कहा, जाओ मोहम्मद से मांगो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जब देते हैं ना तो उनको कोई गम नहीं होता कि मैं किसी पीछे फकीर ना रह जाऊँ। हम कहते हैं पहले अपने लिए रख लो। इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हुमा का बयान है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बढ़कर पैकरे जूदो सुखा थे, और आपका दरियाए सखावत रमदान में इस वक्त ज़्यादा जोश पर होता जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपसे मुलाकात फरमाते, और जिब्राईल अलैहिस्सलाम रमज़ान में आपसे हर रात मुलाकात फरमाते और कुरान का दौर कराते। पस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैर की सखावत में खजाइने रहमत से माला माल करके भेजी हुई हवा से भी ज़्यादा पेश पेश होते थे। ये भी हदीस है, हवाओं की तरह आप सखी हो जाते थे। जब हवा चलती है ना, ऐसे लगता है पीछे कुछ नहीं बचेगा, सब उड़ जाएगा। आप ऐसे जो उड़ाते थे, हम भी उड़ाते हैं कब, जब कोई चीज़ पसंद आ जाए, कोई सेलफोन पसंद आ जाए, कोई जोड़ा पसंद आ जाए, कोई गाड़ी पसंद आ जाए, कोई सोफा पसंद आ जाए। अब कहते हैं कमाते किस लिए हैं, उधार ले लेंगे, कर्ज वो देखो किस्तों पे भी मिलता है। और आप सखावत का बादल थे। हजरत जाबिर रजी अल्लाह अन्हो का इरशाद है कि ऐसा कभी ना हुआ कि आपसे कोई चीज़ मांगी गई हो और आपने नहीं कह दिया हो कि मैं नहीं देता। यानी आपने तो नो कहना कभी सीखा ही नहीं। शुजात, बहादुरी और दलेरी में भी आपका मुकाम सबसे बुलंद और मारूफ था। आप सबसे ज्यादा दलेर थे। नहायत कठिन और मुश्किल मौके पर, जबकि अच्छे अच्छे जानबाजों और बहादुरों के पांव उखड़ गए, आप अपनी जगह बरकरार रहे और पीछे हटने की बजाय आगे ही बढ़ते गए। पाए सुबात में जरा लग्जिश ना आई, यानी बहुत इस्तकामत थी। देखिए छक्के छूट जाते हैं बड़े बड़ों के, और जब सर पे पड़ती है फिर पता चलता है कौन कितने पानी में है। लेकिन आप तब भी खड़े होते जब कोई भी ना साथ होता। बड़े बड़े बहादुर भी कभी ना कभी भागे और पिसवा हुए, यानी दब गए, गिव अप कर दिया, मगर आप में ये बात कभी ना पाई गई। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु का बयान है कि जब जोर का रन पड़ता और जंग के शोले खूब भड़क उठते, यानी जब लड़ाई खूब जोश पे होती, तो हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आड़ लिया करते थे। आपसे बढ़कर कोई शख्स दुश्मन के करीब ना होता। ये हमने राहबरे कामिल में पूरा टॉपिक पढ़ा है, अल्लाह के नबी एक जरनैल की सूरत में, उसमें इसकी डिटेल्स थी। यानी मैदान जंग में सबसे आगे। मैं तो आपके बारे में पढ़ते हुए सोचती हूँ, क्या है कोई माँ जिसने ऐसा बच्चा जना। वही थी बीबी आमना जैसी आम औरतें थी, वही खाती होंगी, वही इर्द गिर्द का माहौल होगा। लेकिन अल्लाह जब किसी को इज्जत देता है ना, तो फिर ऐसी औलादें देता है। और आप देखिए कि अल्लाह के नबी का ये सारा तज़किरा सरासर इबादत है हमारे लिए। एक तो अल्लाह के नबी से मोहब्बत की वजह से, और दूसरे इस वजह से हम कह सुन रहे हैं कि हमने भी ऐसा बनना है। इस पे अमल करेंगे तो देखिए कैसी नस्लें तैयार होंगी। मैं तो पढ़ते हुए सोच रही हूँ, अल्लाह पूरे खानदान में कोई एक बच्चा ऐसा तो दिखे, पूरी गली मोहल्ले में, कोई पूरे बस्ती दोस्तों में कोई एक दो तो ऐसे नजर आ जाएं। आज माएं ऐसे बच्चे नहीं पैदा कर पा रही, क्योंकि अल्लाह के नबी यूनिक थे। अल्लाह ने आपको एक खूबसूरत काम देना था, और जिसको काम देना होता है ना, अल्लाह ताला फिर उसको पहले किरदार देता है। याद रखिए, छोटे किरदार के साथ बड़े काम नहीं होते। और अल्लाह के नबी की ये सारी बातें अल्लाह ताला हमारे अंदर डाल दें। जुर्रत भी है, बहादुरी भी है, इसको कहते हैं हीरो। कौन सा हीरो, दुनिया वाले क्या कहते हैं, कोई अच्छा गा ले तो उसको हीरो, कोई अच्छा खेल ले तो उसको हीरो, कोई अच्छा पढ़ ले तो उसको हीरो। अल्लाह के नबी में तो सब खूबियाँ थीं। हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु का बयान है कि एक रात अहले मदीना को ख़तरा महसूस हुआ। लोग शोर की तरफ दौड़े तो रास्ते में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आते हुए मिले। आप लोगों से पहले ही आवाज़ की जानिब पहुँच कर खतरे के मुकाम का जायज़ा ले चुके थे। इस वक्त आप अबू तलहा रजी अल्लाह अन्हु के बग़ैर जीन के घोड़े पर सवार थे। गर्दन में तलवार हमाइल कर रखी थी और फरमा रहे थे, डरो नहीं, कोई ख़तरा नहीं। यानी आप दूसरे तो भी उठकर आते, आप अकेले ही जाकर देखा है कि नहीं कोई दुश्मन नहीं, जाके आराम करो। आज लीडर्स के साथ नज़ाकत, सिक्योरिटी गार्ड्स, बॉडी गार्ड्स और न जाने क्या कुछ। आप सबसे ज़्यादा हयादार और पस्त निगाह थे। अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि आप पर्दा नशीन कवारी औरतों से भी ज़्यादा हयादार थे। जब आपको कोई बात नागवार गुजरती तो चेहरे से पता लग जाता, ये भी बड़ी बात है। अपनी नज़रें किसी के चेहरे पर गाड़ते नहीं थे, ये भी बहुत खूबसूरत मैनर है। कुछ लोग टुकर टुकर किसी के चेहरे को देखते हैं। आप देखिए, अल्लाह के नबी नहीं देखते थे। और गाड़ना, क्योंकि दूसरा परेशान हो जाता है। आप आंखों की हिद्दत महसूस करते हैं कुछ लोगों की? कोई भी आपको ताड़ना शुरू कर दे, परेशान हो जाएंगे। आप किसी के चेहरे को नहीं देखते थे, निगाह पस्त रखते, यानी नजरें झुकी हुई होती, और आसमान की बनिस्बत जमीन की तरफ नजर ज्यादा देर तक रहती थी। क्या हम्बल फेस जहन में आता है। अमूमन नीची निगाह से ताकते। हया और करमे नफ्स का आलम यह था कि किसी से नागवार बात रू दर रू ना कहते, और किसी की कोई नागवार बात आप तक पहुंचती तो नाम लेकर इसका जिक्र ना करते, बल्कि यूं फरमाते कि क्या बात है कि कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं। देखिए, दो बातें हैं इसमें। एक तो हम कहते हैं जी हम तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होते हैं, मुंह फट होते हैं, हम दिल में नहीं रखते। कोई कहता है मैं बड़ा साफ दिल हूं, कोई कहता है जी मैं दिल में नहीं रखता। हाँ, आप दिल में ना रखे अगले का दिल जला दें। आपने दिल साफ किया, अगले का दिल जला दिया, गंदा कर दिया। देखिए, हर बात मुंह पे नहीं कही जाती, बैड मैनर है। आज बच्चों को बोल्डनेस के नाम पर ये कुछ सिखाया जा रहा है, और कहते छुपाने की क्या जरूरत है, तो फिर सब कुछ ही खत्म कर दीजिए, प्राइवेसी का तो कोई मैटर ही ना रह गया। और दूसरी बात देखिए कि मुंह पे बात कर, नाम लेके, शख्सियत के नाम लेकर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, किसी को पिन पॉइंट नहीं करना चाहिए। आज हमारे बहुत सारे दीन सीखने सिखाने वाले लोग भी इसका ख्याल नहीं रखते, मिंबर पे आके गरज बरस के नाम लेके रुस्वा करके लोगों को जाते हैं। ये सुन्नत तरीका नहीं है। देखिए, जिसने किया होता है उसको पहले पता लग जाता है, दूसरों को बताने की क्या जरूरत है। इसी तरह फर्जदक के इस शेर, यानी अरब शायर है, उसका एक शेर है जो सबसे ज्यादा अल्लाह के नबी पे फिट होता है। क्या कहता है कि आप हया के सबब अपनी निगाह पस्त रखते हैं, और आपकी हैबत के सबब निगाहें पस्त रखी जाती हैं, चुनाचे आपसे उसी वक्त गुफ्तगू की जाती है जब आप तबस्सुम फरमा रहे हों। जी, यानी आप देखिए कि आप की हया थी ना, तो आप नजरें नहीं, मतलब आंखें खोल खोल के नहीं देखते थे। और मर्दों में ऐसा तो बहुत कम होता है। आज आप किसी सड़क से गुजरे तो वो आपको शुरू से लेकर अंत तक छोड़ के आते हैं, अपनी निगाहों से टुकर टुकर नजरें उठाते हैं। बाज दफा बड़े बारिश लोग भी नजरें उठा उठा कर आंखें खोल खोल के आते जातों को देखते हैं, और वो भी फिर औरतों को देखना। तो आपकी निगाहें मोस्टली, जिसको आप कहते हैं ना आधी खुली हुई, और आप जरा सा कोई भी बच्चे का, बड़े का तस्वुर लाएं, बड़ी मासूमियत होती है चेहरे पे जब बंदा आधी आंखें खोले और आधी बंद करे। हम पूरी आंखें खोल के ऐसे अगले को देखते हैं कि खाई जाए अपनी आंखों से। और हैबत होती थी जब कोई आपके सामने आता ना, तो अल्लाह की तरफ से आपके ऊपर एक रोब था, तो लोग आपको देखकर आंखें नीचे कर लेते थे। जब आप मुस्कुराते थे ना, फिर लोग आपसे बात करते थे। आप सबसे ज्यादा आदिल, पाक दामन, सादिकुल लहजा और अजीमुल अमाना थे। यानी अदल था, दामन पाक था, लहजा बड़ा सच्चा था, और अमानते देने वाले थे। इसका इतराफ आपके दोस्त दुश्मन सबको है। नबुवत से पहले आपको अमीन कहा जाता था, और दौरे जाहिलियत में आपके पास फैसले के लिए मुकदमात लाए जाते थे। जामे तिरमिजी में हजरत अली से मरवी है कि एक बार अबू जहल ने आपसे कहा, हम आपको झूठा नहीं कहते। इस जुमले को हाईलाइट कीजिएगा। दुश्मन बोल रहा है, दोस्त तो कहते ही हैं। क्या कहते हैं अबू जहल? हम आपको झूठा नहीं कहते, बल्कि आप जो कुछ लेकर आए हैं इसे झुठलाते हैं। इससे पता चलता है कि मक्का वालों की दुश्मनी नबी सल्लम से नहीं थी, उस पैगाम से थी जो आप लेकर आए, क्योंकि वो बाप दादा के तौर तरीकों से मुख्तलिफ था। और मदीना वालों की दुश्मनी पैगाम से नहीं थी, वो भी वही कहते थे। यहूद का पैगाम और इस्लाम का पैगाम कई जगह बहुत बिल्कुल सेम पैगाम था, लेकिन उनकी दुश्मनी पैगाम्बर से थी। हमारा काम क्या है एज अ मुस्लिम? पैगाम और पैगाम्बर दोनों के साथ मोहब्बत। कुरान में आयत नाजिल होती है, फइन्नहुम ला युकज्जिबूनक वलकिन्नज़्ज़ालिमीन बिआयातिल्लाहि यजहदून। सूरत अल-अन'आम की आयत 33 है। ये लोग आपको नहीं झुटलाते, बल्कि ये जालिम अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं। इसी तरह हिरकल ने अबू सुफियान से दरियाफ्त किया, क्या इस नबी ने जो बात कही है इसके कहने से पहले तुम लोग इन पर झूठ का इल्ज़ाम लगाते थे? तो अबू सुफियान ने जवाब दिया कि नहीं, आप सबसे ज़्यादा मुतवाज़े और तकब्बुर से दूर थे। जिस तरह बादशाहों के लिए इनके खुद्दाम और हाशिया बरदार खड़े रहते हैं, इसी तरह अपने लिए आप सहाबा कराम को खड़ा होने से मना फरमाते थे, यानी इज्जत नहीं मांगते थे झूठी के मैं आऊं तो खड़े हो जाओ। मिस्कीनों की आदत करते थे, फुकरा के साथ उठते बैठते थे, गुलाम की दावत मंजूर फरमाते थे। आज हमारी मासी हमें दावत पे बुलाए, हम कहते छोड़ो, इसके घर का पता नहीं बर्तन भी कैसे धोए होंगे। अल्लाह अकबर, क्या किब्र है हमारे अंदर। सहाबा कराम में किसी इम्तियाज के बगैर एक आम आदमी की तरह बैठते थे, ये भी नोट कीजिए। जरा से चार लफ्ज के आ जाए हमारी तो अकड़ी भर जाती है। आम लोगों की तरह बैठे होते थे, पता भी नहीं चलता था नए आने वाले को कि इसमें से अल्लाह के नबी कौन है। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, क्या आप अपने जूते खुद टांगते थे, अपने कपड़े खुद सीते थे और अपने हाथ से इस तरह काम करते थे जैसे तुम में से कोई आदमी अपने घर के काम काज करता है? आप भी इंसानों में से एक इंसान थे, अपने कपड़े खुद ही देखते कि कहीं इसमें जू ना हो, अपनी बकरी खुद धोते थे और अपना काम खुद करते थे। आप सबसे बढ़कर अहद की पाबंदी और सिला रहमी फरमाते थे, लोगों के साथ सबसे ज्यादा शफकत और रहमत और मुरव्वत से पेश आते थे, रिहाइश और अदब में सबसे अच्छे थे, आपका अखलाक सबसे ज्यादा कुशादा था, बदखुलकी से सबसे ज्यादा दूरो नफूर थे, नफूर नफरत भागना, यानी आपको बद अखलाकी बिल्कुल नहीं अच्छी लगती थी। ना आदतन फुखश को थे, ना बेतकल्लुफ फुखश को थे, यानी आज देखिए बेतकल्लुफी के नाम पे दोस्तें दोस्तों के साथ क्या बेहुदा बातें करती हैं, कोई रास रास नहीं रहता एक दूसरे का। ना लानत करते थे, ना बाजारों में चीखते चिल्लाते थे, ना बुराई का बदला बुराई से देते थे बल्कि मुआफ़ी और दरगुजर से काम लेते थे, किसी को अपने पीछे चलता हुआ ना छोड़ते थे, और ना खाने पीने में अपने गुलामों और लौंडियों पर तरफ़ो इख्तियार करते थे, यानी अपने आप को ज़रा बुलंदी रफ़त बुलंदी रफ़ी, यानी ज़रा एक ऊंचा मुकाम के मुझे ज़रा अलग ही बिठाओ, बड़े नहीं बनते थे आप। अपने खादिम का काम खुद ही कर देते थे, कभी अपने खादिम को उफ़ नहीं कहा, ना इस पर किसी काम के करने या ना करने पर एताब फरमाया, नाराज़ नहीं होते थे। मिस्कीनों से मोहब्बत करते, इनके साथ उठते बैठते और इनके जनाजों में हाजिर होते थे, किसी फकीर को इसके फकर की वजह से हकीर नहीं समझते थे। एक बार आप सफर में थे, एक बकरी काटने पकाने का मशवरा हुआ, एक ने कहा ज़िबा करना मेरे जिम्मे, दूसरे ने कहा खाल उतारना मेरे जिम्मे, तीसरे ने कहा पकाना मेरे जिम्मे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ईंधन की लकड़ियां जमा करना मेरे जिम्मे। सहाबा ने अर्ज किया हम आपका काम कर देंगे, जान निछावर करने वाले ये काम क्यों ना करते? आपने फरमाया मैं जानता हूँ तुम लोग मेरा काम कर दोगे, लेकिन मैं पसंद नहीं करता कि तुम पर इम्तियाज हासिल करूँ, क्योंकि अल्लाह अपने बंदे की यह हरकत ना पसंद करता है कि अपने आप को अपने रुफका में मुमताज समझे। इसके बाद आपने उठकर लकड़ियाँ जमा फरमाई। कुर्बान जाएं आज दुनिया के, आप देखिए बड़े से बड़े लोगों को आप सामने रखिए तो अल्लाह के नबी के तो पाँव की खाक के भी बराबर नहीं है, इसके बावजूद आपके अंदर कितनी आजजी थी। आइए ज़रा हिंद बिन अबी हाला की कहानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ सुनते हैं। हिंद अपनी एक तवील रिवायत में कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हम यानी मुस्तकिल कंटिन्यूसली गमों से दो चार थे, हमेशा गौर व फिक्र फरमाते रहते थे, आपके लिए राहत ना थी, बिला ज़रूरत ना बोलते थे, देर तक खामोश रहते थे, अस अव्वल ता आखिर बात पूरे मुंह से करते थे, यानी सिर्फ मुंह के किनारे से ना बोलते थे। कुछ लोगों के बोलने का अंदाज़ होता है सिर्फ होंठ हिलते हैं, उनके एक्सप्रेशंस नहीं होते, अंदर से एक बात के उठने का अंदाज़ नहीं होता। जामे और दो टोक कलेमात कहते थे जिनमें ना फजूल गोई होती थी ना कोताही, नरम खू थे, जफा जू और हकीर ना थे यानी बेवफा नहीं थे। नेमत मामूली भी होती तो इसकी ताजीम करते थे, ये भी बड़ी बात है। हमें अच्छी से अच्छी चीज़ कोई दे दे, हमारा नखरा ही नहीं खत्म होता, हम नहीं खाते, हम नहीं पहनते, ये भी एक तकब्बुर है। किसी चीज़ की मुज़म्मत नहीं फरमाते थे, खाने की ना बुराई करते थे ना तारीफ, हक को कोई नुकसान पहुंचाता तो जब तक इंतकाम न ले लेते, आपके गैस को या आपके गजब को रोका ना जा सकता था। देखिए, अपनी जात के लिए खैर, लेकिन हक के खिलाफ कोई बात करता तो आप फिर इंतकाम लेते थे। अलबत्ता कुशादा दिल थे, अपने नफ्स के लिए ना गजबनाक होते ना इंतकाम लेते। जब इशारा फरमाते तो पूरी हथेली से इशारा फरमाते, और ताज्जुब के वक्त हथेली पलटते। जब गजबनाक होते तो रुख फेर लेते, और जब खुश होते तो निगाह पस्त फरमा लेते। आपकी बेशतर हंसी तबस्सुम की सूरत में थी, यानी बहुत मुंह खोल कर कह कहे नहीं लगाते थे। मुस्कुराते तो दांत ओलों की तरह चमकते, यानी सफ़ेद दांत थे। लायानी बात से जुबान रोके रखते, साथियों को जोड़ते थे तोड़ते ना थे, इसको भी हाईलाइट कीजिए। हमारा दीन हमें जोड़ने का हुक्म देता है, तोड़ने का नहीं। हम तो अपनों को काट देते हैं, गैरों को क्या जोड़ेंगे। हर कौम के मोजज़ आदमी की तकरीम फरमाते थे, यानी कोई किसी भी मजहब, किसी भी मसलक, किसी जमात गिरोह का तो उसकी इज्जत करते थे, और इसी को इनका वाली बनाते थे। लोगों के शर से महफूज रहते और इनसे बचाव इख्तियार फरमाते थे, लेकिन इसके लिए किसी से अपनी खंदा जबीनी खत ना फरमाते। खंदा क्या होता है? स्माइल, मुस्कुराना, और जबीन फोरहेड, यानी हंसते माथे से बात करते थे। हमें कोई अच्छा न लगे तो हम तो उसकी तरफ से तुनक निगाहों से देखते हैं कि ये पता नहीं कौन आगे बाहर से, हम तो नहीं इसको जानते। और हमारा तो प्यार मोहब्बत भी बस अपने चंद दीन के नामों के साथ होता है, हम दूसरे को क्या समझें। शादियों में जाएं तो आपस में बातें, किसी जगह बैठ गए तो हम। आप देखिए कि ये प्यार अपने अंदर ले आए ना हम, तो सब आपके हैं। कहते हैं ना, जुबान शीरी मुल्क गिरी, मीठी जुबान आला सारी दुनिया को राम कर लेता। अपने असहाब की खबर गिरी करते और लोगों के हालात दरियाफ्त फरमाते, अच्छी चीज की तहसीन और तस्वीब फरमाते। क्या होती है तहसीन? हुसन से तारीफ, और तस्वीब स्वाब, स्वाद वाव बा से। साहिब राय का लफ्ज़ सुने आपने? वही चीज़ है, यानी मुराद यह कि जब आपके सामने कोई अच्छी चीज़ होती ना तो आप उसकी बहुत तारीफ करते और उसकी ठीक हक पहचानते, और बुरी चीज़ की तकबीह हो तौहीन, यानी उसको कभी समझते। बुरी चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगती थी। मोतदिल थे, यानी बैलेंस्ड, अफरात और तफरीत से दूर थे, नो एग्जेजरेशन। गाफिल ना होते थे कि कहीं लोग भी गाफिल या मलूल खातिर हो जाएं, यानी आप चूंकि खुद अलर्ट रहते थे तो आप इर्द गिर्द वाले भी अलर्ट रहते थे। हर हालत के लिए मुस्तैद रहते थे, मुराद तैयार। हक से कोताही न फरमाते, ना हक से तजावुज़ फरमा कर ना हक की तरफ जाते थे। जो लोग आपके करीब रहते थे वो सबसे अच्छे लोग थे, और इनमें भी आपके नज़दीक अफसल वो था जो सबसे बढ़कर खैर ख्वाह हो। नोट कीजिए, दीन व नसीहा, दीन खैर ख्वाही का नाम है। किसी की भी, हुक्काम से लेके आम लोगों से लेके अपनी ज़ात, सबके सिंसियर रहिए, मत किसी का बुरा सोचें। और सबसे ज्यादा कदर आपके नज़दीक उसकी थी जो सबसे अच्छा गम गुसार और मददगार हो। आप उठते बैठते अल्लाह का जिक्र जरूर फरमाते, जगह मुतय्यन ना फरमाते कि इस जगह बैठ के ये करना है तो इस जगह बैठ के ये पढ़ना है। हर वक्त खुला जिक्र करते थे, यानी अपने लिए कोई इम्तियाजी जगह मुकर्रर ना फरमाते थे, यानी कोई खास आपकी डिस्टिंग्विश्ड प्लेस नहीं थी कहीं बैठने की। जब कौम के पास पहुंचते तो मजलिस में जहां जगह मिल जाती बैठ जाते, और इसी का हुक्म भी फरमाते। सब अहले मजलिस पर बराबर तवज्जो फरमाते, हत्ता के कोई जलीस, जलीस कहते साथी को, जलसा, कोई जलीस ये ना महसूस करता कि कोई शख्स आपके नजदीक इससे ज्यादा बाइज्जत है। कोई किसी जरूरत से आपके पास बैठता या खड़ा होता तो आप इतने सब्र के साथ इसके लिए रुके रहते कि वो खुद ही वापस होता। कोई किसी जरूरत का सवाल कर देता तो आप इसे अता किए बगैर या अच्छी बात कहे बगैर वापस न फरमाते। आपने अपनी खंदा जबीनी और अखलाक से सबको नवाजा, यहाँ तक कि आप सबके लिए बाप का दर्जा रखते थे और सब आपके नजदीक यकसां हक रखते थे। किसी को फजीलत थी तो तकवा की बुनियाद पर। आपकी मजलिस हिल्म व हया और सब्र व अमानत की मजलिस थी। इसमें आवाज़ें बुलंद न की जाती थी और न हुरमतों पर ऐब लगते थे, यानी किसी की बेआबरूई का अंदेशा न था। किसी की बेआबरूई नहीं करते थे, बेइज्जती नहीं करते थे। लोग तकवा की बदौलत बाहम मोहब्बत और हमदर्दी रखते थे, बड़े का एहतराम करते थे, छोटे पर रहम करते थे, हाजतमंद को नवाजते थे और अजनबी को उन्स अता फरमाते थे। आपके चेहरे पर हमेशा बशाशत रहती, इसको भी नोट करें। फ्रेश, हम तो थके हुए गमों के मारे हुए, हाय क्या बताऊं कितने गम है, कितनी परेशानी है। नहीं, फ्रेश, बशाशत, रिलैक्सेशन, सहल खू, आसान दो, इजी गोइंग, सखल खू और नरम पहलू थे, यानी लोगों को आपसे मामला करना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं लगता था। जफाजू और सख्त खू न थे, न चीखते चिल्लाते थे, न फुखश कहते थे, न ज्यादा इताब फरमाते थे, न बहुत तारीफ करते थे। जिस चीज़ की ख्वाहिश न होती उससे तगाफुल बरतते थे, यानी उससे बिल्कुल अजनबी रहते हुए। आपसे मायूसी नहीं होती थी, ये भी नोट करें। क्या आपको मिलकर लोग मायूस तो नहीं होते? आपने तीन बातों से अपने नफ्स को महफूज रखा, अल्लाह हमें भी महफूज रखे। कौन सी? रिया से, शो ऑफ, किसी चीज की कसरत से, और ला यानी बात से। और तीन बातों से लोगों को महफूज रखा, यानी क्या? लिखिए और अपने लिए अभी से पहले सुनने से ही नियत कर लें कि हमने भी ऐसे ही करना है, लोगों के साथ ये नहीं करना। क्या? नंबर एक, किसी की मजम्मत नहीं करते थे, तारीफ का ऑपोजिट। किसी को आर नहीं दिलाते थे, हम तो जब तक अगले को आर दिलाकर रुला ना दे छोड़े ना, शर्मिंदा करते हैं भरी महफिलों में लोग एक दूसरे को। और किसी की ऐब जो ही नहीं करते थे, आप वही बात नोके जुबान पर लाते थे जिसमें सवाब की उम्मीद होती। जब आप तकल्लुम फरमाते तो आपके हम नशीं यूं सर झुकाए होते, गोया सरों पर परिंदे बैठे हुए। आपने आपको सोची इस वक्त भी, मैं क्या कर रही हूं? और जब आप खामोश होते तो लोग गुफ्तगू करते, लोग आपके पास गपबाजी न करते थे। आपके पास जो कोई बोलता सब इसलिए खामोश, सब उसके लिए खामोश रहते, यहां तक कि वो अपनी बात पूरी कर लेता। इनकी बात वही होती जो इनका पहला शख्स करता। जिस बात से सब लोग हंसते इससे आप भी हंसते। आज हम हंसते नहीं कहते, लोग कहेंगे लो जी ये भी हंस पड़े, ये घुल गए मिल गए। भाई रिलैक्स रहिए, क्यों नून में नुक्ता बनते हैं और खास तौर पे चार लफ्ज पढ़ के। और जिस बात पर सब लोग ताज्जुब करते इस पर आप भी ताज्जुब करते। असल में आज हमने बड़ा बनना होता है ना, कोई जरा पीरी मुरीदी चले हमारी, कोई कोई हमें बड़ा समझे, शेख साहब और फुलां साहब। ना ना ना, हम नहीं, ना ना ना, चुप। सब आपको देखे शर्मिंदा हो जाए कि ओहो हम तो हंस पड़े, नहीं नहीं ज्यादा नहीं हंसते, गुनाह होगा। जो नेक है वो हंसे नहीं। रिफ्लेक्सली जो चीज़ अच्छी लगती अच्छी लगती, जो ताज्जुब होता आपको भी होता, कोई आपके अंदर आर्टिफिशियलनेस नहीं थी। अजनबी आदमी दुरुस्त कलामी से काम लेता तो इस पर आप सब्र करते और फरमाते, जब तुम लोग हाजतमंद को देखो कि वह अपनी हाजत की तलब में है तो इसे सामान्य ज़रूरत से नवाज दो। आप एहसान का बदला देने के सिवा किसी से सना के तालिब ना होते, यानी कोई आपकी तारीफें करे। खारिजा बिन जैद रजी अल्लाह अन्हो का बयान है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मजलिस में सबसे ज्यादा बावक़ार होते, अपने पाँव वगैरह ना फैलाते, बहुत ज्यादा खामोश रहते, बिला जरूरत ना बोलते, जो शख्स ना मुनासिब बात बोलता इससे रुख फेर लेते। आपकी हंसी मुस्कुराहट थी और कलाम दो टोक, ना फजूल ना कोताह। आपके सहाबा की हंसी भी आपकी तौकीर व इक्तदा में मुस्कुराहट ही की हद तक होती। इतना कुछ पढ़कर तो ऐसे लगता है कि डिक्शनरी के लफ्ज़ ही ख़त्म हो गए। और दिल के अंदर दुआएं कि अल्लाह बच्चे दे तो ऐसे दे, भाई हो तो ऐसे हो, बेटे हो तो ऐसे हो, शोहर मिले तो ऐसे मिले, और ख्वातीन में भी यही खूबियाँ हो। हासिल क्या है सारी बात का खुलासा, आखिरी लफ्ज़ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेनज़ीर सिफाते कमाल से आरास्ता थे। आपके रब ने आपको बेनज़ीर अदब से नवाजा था, हत्ता कि इसने खुद आपकी तारीफ में फरमाया, व इन्नकल आला खुल्क नसीम, सूरत कलम की आयत 4 है। यकीनन आप अजीम अखलाक पर हैं, ये ऐसी खूबियां थी जिनकी वजह से लोग आपकी तरफ खिंच आए, यानी अट्रैक्शन महसूस करते थे। दिलों में आपकी मोहब्बत बैठ गई और आपको क़यादत का वो मुकाम हासिल हुआ कि लोग आप पर वारिफ्ता हो गए, यानी लोग अपनी जान देने के लिए तैयार होते थे, कुर्बान जाते थे लोग आपके ऊपर। इन्हीं खूबियों के सबब आपकी कौम की अकड़ और सख्ती नरमी में तब्दील हुई, यहाँ तक कि वो अल्लाह के दीन में फौज दर फौज दाखिल हो गई। और इस बात को भी याद रखिएगा कि इन सफ़ात में आपकी जिन खूबियों का जिक्र है वो आपके कमाल और अजीम सिफात के मज़ाहिर, यानी उसकी ज़ाहरी चीज़ों की चंद छोटी छोटी लकीरें हैं, वरना आपके मजद और शर्फ और शमाइल और खसाइल की बुलंदी और कमाल का ये आलम था कि इनकी हकीकत और तह तक ना रसाई मुमकिन है, ना इसकी गहराई नापी जा सकती है। बल आलम वजूद के इस सबसे अजीम बशर की अजमत की इंतहा तक किसकी रसाई हो सकती है, जिसने मजदो कमाल की सबसे बुलंद चोटी पर अपना नशेमन बनाया और अपने रब के नूर से इस तरह मुनव्वर हुआ कि किताब इलाही ही को इसका वसफ और खुल्क करार दिया, यानी कारी नजर आता है हकीकत में है कुरान। तो ये थे प्यारे मुस्तफ़ा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाला आली मुहम्मदिन कमा सल्ली ताला इब्राहीमा वाला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वाला आली मुहम्मदिन कमा बारक ताला इब्राहीमा वाला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाही बिनेमतिही ततिम्मु सालिहात, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। पूरी सीरीज़ में जो गलती हुई वो मेरी तरफ़ से और शैतान के धोखे थे, और कोई खैर की बात है, अच्छी बात है, तो अल्लाह ताला की तरफ से है। अल्लाह ताला से दुआ है कि कमी बेशियों को दूर फरमाए, हमें अपनी इस्लाह की तौफीक अता फरमाए। आप कुछ भी इस पे कहना चाहें तो आप लोग माइक ले सकते हैं। और यह है कि चूंकि हमने इस बुक का यूट्यूब और ऑनलाइन पे सिलसिला सूरत फ़तह से शुरू किया है, ये फतह सूरत फतह से बल्कि बात गज़वे तबूक से गालिब आया, तो इंशाअल्लाह ताला आपके लिए सीरीज़ को हम कंप्लीट करेंगे। अल्लाह ताला साथियों को बेहिसाबी जज़ा दे। तो शुरू से, यानी बुक तो पूरी रिकॉर्डेड है ना, तो अभी तो ये लाइव सेशंस चल ही रहे हैं, तो इंशाअल्लाह जो शुरू के हिस्से हैं उसको एक स्केड्यूल के साथ प्रीमियर करते जाएंगे। तो आप लोग शुरू से शुरू कर दीजिए सुनना, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से पूरी होगी। जी, कोई माइक लेना चाहे तो ले लीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये जज़ाकअल्लाह खैर। हाँ जी, सुबीन जी माइक लीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू उस्ताज़ा जी और तमाम एडमिन्स को, सिस्टर्स को।
वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह।
जज़ाकअल्लाह खैर उस्ताज़ा जी। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही बेहतरीन बातें सुनने को मिली और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक पूरा स्केच, एक इमेज ज़हन में बना और हमारे अपने अमल के लिए बहुत सी चीज़ें मैंने नोट की हैं कि जो अपने अंदर लानी है और जिनकी कोशिश करनी है। और जो मैं शेयर करना चाह रही हूँ, जिसके ऊपर मैं काम भी कर रही हूँ, वह ये कि कम बोलना है, मुख्तसर और मुजमल बात करनी है। जब हम फजूल बातें करते हैं तो वो हमारा एनर्जी भी ले लेती हैं, हमारा फोकस भी छिन जाता है और बहुत सारा वक्त भी ज़ाया हो जाता है जो हम किसी प्रोडक्टिव चीज़ में हम लगा सकते हैं और हम वो नहीं करते, और हम फजूल चीज़ों में बाद में भी सोचते रहते हैं और जहन भी थकता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब उनकी करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी और देखा तो वो इसीलिए वो इनकलाब लेकर आए और इसीलिए इतना सब कुछ चेंज आया, इतनी हठधर्म और इतनी जिद्दी कौम कैसे वो चेंज हो गई, वो ये उन्हीं की यही सारी करेक्टरिस्टिक्स थी। और हमें हम जो ये ऑडियो सुनते हैं कि अपने अंदर किस तरीके से हम अच्छा इंसान कैसे बने और अच्छा ये कैसे बने, तो हमें सीरत को को हमें फॉलो करना चाहिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक अपनाने चाहिए। और मेरा ख्याल है कि यही सबसे, इसी से हम अपने अंदर भी इनकलाब ला सकते हैं और अपने बच्चों में और फैमिली में भी। जज़ाकअल्लाह खैर, और अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक दे। आमीन।
अल्हम्दुलिल्लाह
जी, आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन, सुभान अल्लाह। उस्ताद जी, मैं ये भी सोच रही थी अभी मेरे जहन में कि जब ख़ासतौर पे जो मामलात है ना, देखिए हम इबादत में भी बड़े अच्छे, सुकून भी मिलता है, और किसी हद तक पर्सनैलिटी ग्रूमिंग में भी हम कहेंगे कि हम आप ससलम जैसे हो जाएं, सब कुछ ना। लेकिन ये जो चार वस्फ हमने पढ़े हैं ना आप ससलम की, कुव्वत बर्दाश्त, बुर्दबारी और कुदरत होने के बावजूद दरगुजर और मुश्किलात पर सब्र, रियली ये आसान नहीं है। ये कहना बड़ा आसान है, लेकिन रियली जब इंसान पे कोई मुश्किल पड़ती है, जब किसी को कुछ कहने को जुबान बहुत दिल कर रहा है कि बस एक एक इन्होंने दो सुनाई है, मैं सो सुनाऊँ है, और उस पर फिर, या कोई किसी मुश्किल पे पहली चोट पे सब्र, ये सब कुछ जो है ये इंशाल्लाह हमें अपनाना है। और देखें कि आपसे सलम मामलात में यानी इंसानों के साथ डील जो कैसे करते थे, ख़ास रूप पे जो गरीब इन थे उनके साथ, और आप सलम के जो खादिम थे कि कभी आपने अपने खादिम को उफ नहीं कहा, इतनी अजीब रियली। और मैं भी ये सोच रही थी कि हमारे को नौकर हो तो हम तो दो या तीन दफा सब्र करें और चौथी दफा हम कह दें बड़ा तुन के ये क्या वो क्या, और हम कैसे बात करते हैं ना, और गुलामों पर लुंगियों पर कहते थे आपसे सलम अल्लाह पर। मेरा अल्लाह सुबहाना तआला हमें आपसे सलम के नक्शे पा पे चलने की तौफीक दे, और ये अखलाक जो है इन अखलाक को अल्लाह हमें अपनाने की तौफीक दे। बहुत ही ज्यादा फिक्र के बाद और दुआ मांगने की जरूरत है, बहुत ज्यादा, कि रियली आपसे सलम में ये अखलाक थे, तभी तो वही बात है कि बद्दू थे और सख्त थे, लेकिन वो कैसे नरम हो गए ना। अल्लाह अकबर कबीर, अल्लाह सुबहाना तआला हमें भी ऐसे अखलाक से मुत्तसिल करे, और अल्लाह सुबहाना तआला हमारी नस्लों में भी ऐसे बच्चे पैदा करेगी। उस्ताद जी ने जो बात की आज, वाकई हम तो आज दूरबीन लेके ढूंढे ना, ऐसा बंदा तुम्हें कहीं मिले ही ना। अल्लाह अकबर कबीर, अल्लाह सुबहाना तआला हमें अमल की तौफीक दे। अगर कोई और सिस्टर शेयर करना चाहती हैं तो आप लोग जी, आप बोलिए आपका सर।
जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है ना, बहुत ज्यादा अमल के पॉइंट्स भी मिलते हैं, और ऐसे जब जब पढ़ते हैं बहुत अच्छा लगता है, और अमल पे दिल करता है कि हम अमल करें ना। एक दो बातें जो बहुत ज्यादा मुझे एंड पे उस्ताद अच्छी लगी हैं, कि जो बहुत अच्छी लगी, मुश्किल भी हैं जाहिर है, हम खुद यानी इस तरह की जैसे हम लोग पहले कुरान से जुड़ने से पहले जी रहे थे ना, तो उससे एकदम अपने आप को चेंज करना, जो आपने बात कही कि वाकई मुश्किल होता है ना, कहना बहुत आसान है और करना बहुत मुश्किल है, अमल का जब टाइम आता है ना तो इंसान की चीखें निकल जाती हैं वाकई में। लेकिन हमने अल्लाह पाक से तौफीक मांगते रहना है और नबी की सुन्नत पे पूरा अमल करने की कोशिश करते रहना है, क्योंकि अल्लाह के पास कुछ भी नामुमकिन नहीं है ना। तो ये चीज होता रहती है कि हमने ये करना है। और एक बार जो सजा जी ने कही कि हमने अपने बच्चों के लिए दुआएं मांगनी है ना, कि चले हम जैसे सोते हैं हमारा वक्त तो खत्म हो गया, या पता नहीं कितना टाइम है हम अपने आप को चेंज कर सकेंगे कि नहीं। हमने अपने औलादों को अच्छी तरबियत करनी है, बताना है कि हमारे नबी पैसलम की सुन्नत क्या है, वो उस तरीके पे चले, और ये कोशिश हमने करनी है जो हमारे लिए सदका जारिया भी बनेगी, और हम शायद इस कोशिश के जरिए अल्लाह के आगे सुरखुर हो सके, अपने नबी के आगे सुरखुर हो सके। तो अलहम्दुलिल्लाह के हमें बार बार ये चीजें दोबारा दोबारा रिमाइंड होती हैं और हम सुनते हैं, तो अल्लाह का बहुत एहसान है कि अल्लाह पाक ने हमें इतने अच्छे उस्ताद दिए हैं कि हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। अल्लाह पाक हमें इससे बेहतरीन फायदा उठाने वाला बना दे। जजाकअल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
जी सिस्टर नासिया,
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
वालेकुम अस्सलाम।
अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ लर्न किया नबी पाक सल्लम की सीरत से, असाद जी की बातों से। तो जो मैं मेरे मेरी अपनी जात के लिए जो अमल मैंने सीखा, एक तो अल्लाह पर तवक्कल, और इसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा काम भी कर रही हूँ। और मेरी ज़िंदगी में अभी बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस भी आई, और जो हमने दुआओं का भी सेशन किया था उससे भी, जैसे साथ जी ने बताया कि कोई भी मुसीबत आए, कुछ भी, सिर्फ एक दफ़ा बस ये कह के और अल्लाह पे छोड़ दें कि ला इलाहा इल्लल्लाह, तो मैं वो कर रही हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह वो इतना मुझे फ़ायदा देता है, और मुझे नहीं लगता कि मेरी टेंशन कहाँ जाती है। और उसके बाद जो सीरत से जो एक चीज, जबान और इखलाक, हमारा अखलाक जो है वो इतना, मतलब हमारी अपनी लाइफ में जो 80% जो मामलात होते हैं हमारे, और जो टेंशन्स हमारे लिए बन जाती हैं, वो मेरे ख्याल में वो जबान की वजह से ही होती हैं। या किसी की जबान से हम हर्ट हो जाते हैं, या हम किसी को जाने अनजाने में हम किसी को तकलीफ दे देते हैं। तो ये वाकई जबान को कंट्रोल करना यही तख्त पे बिठाती है, और यही जो है एक, मतलब जिल्लत का भी सबब बनती है, और इंसान को इज्जत देने का भी बायस बनती है यही जबान। तो इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर काम करना है, और अल्लाह ताला बस इस्तकामत दे, और इसी तरह हम दीन से जुड़े रहें। और तमाम एडमिन्स का, सादसा जी का, और जितने भी बैक पे जो लोग काम कर रहे हैं उन सब का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला उनसे बेहतरीन काम ले, और हमें इसमें हमेशा इस कार्य खैर का हिस्सा बना के रखे, और हमें सीखने वालों में हमेशा रखे। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
वालेकुम अस्सलाम। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। आपकी भी अल्लाह सुब्हानहू तआला दे जी सर, सिस्टर शफक जी।
अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक तो मैं सबसे पहले साथ जी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी आज का भी ये कोर्स कंप्लीट करने पर। दूसरा, बहुत से अमल के नुक्ते सीखे, और इसमें जो ये सिफात सीखी बुटबारी की, कुव्वते बर्दाश्त की, जैसा सिस्टर्स पहले बात कर चुकी हैं, और कुदरत पाकर दरगुजर करने की और मुश्किलात पर सब्र करने की। तो ये जैसा हमें इस तरफ आते हुए, ये तमाम कोर्सेज करते हुए जहन में बहुत सारे सवाल आते थे जो पूछना चाहते थे हम असातिज़ा जी से। मगर जैसा सफ़र के शुरू में ये सीखा कि जो अब सहाबा कराम की ज़िंदगी पर भी नज़र डालते हैं कि उन्होंने मतलब ज़्यादा सवाल नहीं किए, टोटल 14 सवाल किए, और फिर खुद ब खुद उसके, जब आप इस पर सब्र करते हैं तो आपको खुद ही अपने जवाब मिलना शुरू हो जाते हैं। तो बेसिकली आपने एक बेहतर मुसलमान कैसे बनना है तो बिल्कुल ठीक सिखाया साजा जी ने हमें, कि आप सीरत पढ़ें और साथ साथ उस पर अमल करने की कोशिश करते जाएं। और जैसा सिस्टर ने पहले कहा, अपनी जबान पर कंट्रोल रखें, और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा वो आजिज़ थे हर मामले में, आजिज़ी कितने काम आती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने वाला बनाए। तो आप तमाम लोगों का शुक्रिया कि आपने हमें ये कोर्स करवाया है, और मतलब ये जरिया बने हमें इस तरफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से सबक लेने का। जज़ाकअल्लाह खैर।
जी जजाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। वासन जजा तमाम सिस्टर्स के लिए, इंशाल्लाह हम लोग कंप्लीट करते हैं अपने सेशन को दुआ के साथ। उस्ताद जी अगर आप दुआ करवा दें। इंशाल्लाह चलिए मैं दुआ कराती हूँ। नमाज का टाइम हो चुका है। يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره أهل أنت أن تعبد أهل أنت أن تحمد لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم